नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 2 और 4 मई के बीच हुई एक ऑफ साइकिल मीटिंग में रेपो दर को 40 आधार अंकों तक बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 4.40% कर दिया है। इस घोषणा के बाद सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से ब्याज दर को 40 बीपीएस बढ़ाकर 4.40% करने का फैसला किया है। कहा कि आरबीआई एमपीसी ने वैश्विक विकास का आंकलन करने के लिए ऑफ साइकिल बैठक की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति को बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कहा कि कच्चे तेल की कीमत अस्थिर है और $100 प्रति बैरल से ऊपर है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि खाद्य तेलों की कमी की वजह से यूरोप में संघर्ष और निर्यातकों द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना है। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ को पहले दिन बुधवार दोपहर तक 0.29 गुना अभिदान मिला। शेयर बाजारों के आंकड़े के अनुसार कुल निगम में से पॉलिसी धारकों वाले हिस्से को पूर्ण अभिदान मिला, जबकि कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्से को 0.49 गुना अभिदान मिला। पात्र संस्थागत खरीदारों और गैर संस्थागत खरीदारों वाले हिस्से के लिए अब तक कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सरकार को LIC के IPO से 21,000 करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद थी। वह LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। IPO के मूल्य दायरा 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर 45 रुपए की छूट मिलेगी, जबकि LIC के पॉलिसी धारक 60 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की छूट पा सकेंगे। यह IPO बिक्री पेशकश के रूप में है और इसके जरिए सरकार 22.13 करोड़ शेयर बेचना चाहती है। कंपनी के शेयर 17 मई को सूचीबद्ध हो सकते हैं। LIC ने बताया कि उसने एंकर निवेशकों से 5,627 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, जिनमें घरेलू कंपनियों की बहुतायत है। एंकर निवेशकों के लिए 449 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर पर 5.92 करोड़ शेयर आरक्षित रखे गए थे। कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि देश भर में उसके पेशेवर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या 500 हो गई है और उसका लक्ष्य 2025 तक करीब 25 लाख लोगों को प्रशिक्षण देना है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल्स की शुरुआत 2005 में हुई थी और अब 242 शहरों में उसके 500 अत्याधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल हैं, जिनमें 17 लाख से अधिक लोगों को वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक शशांक श्रीवास्तव ने कहा, MSDS के साथ करीब 1,500 प्रमाणित योग्य एवं विशेषज्ञ प्रशिक्षक जुड़े हैं, जो सुरक्षित वाहन चालन का प्रशिक्षण देते हैं। हमारा उद्देश्य साल 2025 तक 25 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देना और मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल के नेटवर्क का विस्तार करना है। यूरोपीय आयोग की नेता ने 27 सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ से बुधवार को मांग की कि रूस से होने वाले तेल के आयात पर रोक लगा दी जाए। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने प्रस्ताव दिया कि रूस के सबसे बड़े बैंक सब बैंक और 2 अन्य प्रमुख बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से अलग थलग कर दिया जाए। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए लेन ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से 6 महीने के भीतर कच्चे तेल और साल के अंत तक परिष्कृत उत्पादों के आयात को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि रूस के लिए जाने वाले तेल आयात को व्यवस्थित ढंग से बंद किया जाए, कुछ इस तरह कि हम और हमारे साझेदार वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों की पहचान कर लें और वैश्विक बाजारों पर इसका असर कम से कम हो। हालांकि उन्होंने ये माना कि इस प्रस्ताव पर सभी 27 देशों को राजी करना आसान नहीं होगा। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने गुजरात के मासेनका में 120 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना में परिचालन शुरू कर दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी TPREL ने एक और सौर परियोजना शुरू की है, जो गुजरात सरकार के लिए सालाना 3,05,247 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। इसमें बताया गया कि इस परियोजना की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सालाना 1.3 लाख टन तक की कमी आएगी। टाटा पावर के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक प्रवीर सिन्हा ने कहा, महज 5 माह की अवधि में गुजरात के मासेनका में 120 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने की घोषणा करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। इस परियोजना के साथ टाटा पावर की नवीकरणीय ऊर्जा की परिचालन क्षमता बढ़कर 3,520 मेगावाट हो जाएगी। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के विस्तार पर बुधवार को चर्चा की। इससे दोनों देशों के बीच और उड़ानों के संचालन का रास्ता साफ होगा। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अमेरिका और कनाडा के 9 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कनाडा के परिवहन मंत्री उमर अलगाबरा से बुधवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अलगाबरा ने ट्वीट किया, महामारी की शुरुआत में भारत में फंसे कनेडियाई नागरिकों को वापस भेजने में भारत से हमें जो मदद की गई, उसके लिए मैंने अपने भारतीय समकक्ष को निजी तौर पर आभार व्यक्त किया। कनाडा की आबादी में भारतवंशी लोगों की अच्छी खासी संख्या है। अलगाबरा ने कहा कि कनाडा और भारत के लिए पारस्परिक महत्व वाले मुद्दों पर उनकी सिंधिया के साथ सकारात्मक बातचीत हुई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।